अध्याय 3 परमेश्वर के लोगों के बीच परिस्थितियां। प्रचार कार्य में उत्साह की कमी। सब्बत मानने वाले एडवेंटिस्ट लोगों में प्रचार कार्य करने का जज्बा काफी कम मात्रा में है। यदि प्रचारकों व प्रभु के लोगों में ये काम करने की काफी जागृत होती तो वे कभी भी देरी नहीं करते। जबकि प्रभु ने उन्हें अपनी व्यवस्था के अधिकारी ठहरा दिया है, ये व्यवस्था उनके मन और हृदयों पर लिखती है। ऐसा लगता है कलीसियाओं को सुसमाचार प्रचार की आत्मा छोड़ चुकी है, जो प्रचार के काम को इतना उत्कृष्ट कार्य बनाती है। इनके हृदय में अब वो आग नहीं रही, वो प्रेम नहीं रहा जो खोई हुई आत्माओं को बचाने और उन्हें प्रभु यीशु के समीप लाने की इच्छा रखता हो। हमें ईमानदार कार्य करने वालों की आवश्यकता है। क्या कोई नहीं है जो इस आवाज को सुने जो हर एक घर से आ रही है, आओ और हमारी मदद करो। मुझे ये दिखाया गया है कि परमेश्वर के लोगों में कमी पाई गई है। हमारे काम हमारे विश्वास के समान नहीं है, जबकि हमारा परमेश्वर पर भरोसा इस बात का प्रमाण है कि हम एक ऐसे पवित्र और कीमती सुसमाचार जो जगत के नाशवान लोगों को सुनाने के लिए दिया गया है, उसे जगत भर में प्रचार करना, लोगों को सुनाना है। इस सब बातों की सच्चाई को पूर्ण रूप से जानने के बाद भी हमारे कार्य, जोश, आत्म बलिदान की आत्मा कार्य के अनुरूप क्रियाशील नहीं है। हमें अपनी मरी हुई आत्माओं को जगाना है ताकि मसीह में हम जिलाए जाए हैं। मेरा हृदय रोता है, दुखी होता है जब मैं ये सोचता हूं कि हमारी कलीसियाएं परमेश्वर के द्वारा सौंपे गए एक पवित्र काम, जिसका लेखा हमसे लिया जाएगा, उस काम को छोटा समझकर कर ही नहीं रहीं। केवल परमेश्वर के प्रचारक ही उसके सिपाही नहीं, बल्कि हर एक स्त्री व पुरुष जिन्होंने प्रभु की सेना में अपना नाम दर्ज कराया है, क्या वे एक सैनिक की तरह जीवन जी रहे हैं, जैसा मसीह यीशु ने स्वयं अपना स्वर्गीय सिंहासन त्याग कर एक सेवक बना और अपना बलिदान दिया। हमारी कलीसियाओं के लोगों ने कौन सा आत्मत्याग करने का उदाहरण दिया है? शायद उन्होंने बड़े बड़े दान दिए होंगे, किंतु अपने आप को काम पर लगाने से बचाए रखा है, जो दान देने से कहीं ज्यादा जरूरी है। जगत के अन्य लोगों की अपेक्षा ऐसे बहुत से प्रभु के पीछे चलने वाले सेवक हैं, जिन्हें आत्माओं को बचाने का काम अपने कंधों पर बोझ नहीं लगता। आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, दिखावे का जीवन, आराम पसंद जीवन लोगों को परमेश्वर से दूर कर देता है, और सुसमाचार प्रचार का आत्मा पाया तो जाता है, किंतु केवल कुछ ही लोगों में। ऐसे दुष्टों व गुनाहगारों की आंखें खोलने के लिए आखिर क्या किया जाए कि ये सच्चाई को देख सकें, समय का मान जान सकें, और ऐसे कपटी व ढोंगी लोग डर कर कांपने लगें। मिरौज के द्वारा एक वर्ग के लोगों को प्रस्तुत किया गया है। उन लोगों ने कभी भी सुसमाचार प्रचार कार्य की आत्मा को नहीं पाया। यहां तक कि बाहरी मिशन्स की बुलाहट भी उन्हें काम करने पर मजबूर नहीं कर सकी। ऐसे लोग प्रभु को क्या जवाब देंगे जो उसके लिए कुछ करते ही नहीं, न तो आत्माओं को जीतने का काम करते हैं। ऐसों को प्रभु त्याग देगा और कहेगा, हे दुष्ट एवं निकम्मे सेवक, क्योंकि ये आपके लिए सुअवसर था प्रभु के लिए काम करने का, किंतु आपने अपने हिस्से का काम न कर अपनी असफलता का परिचय दिया है। इस पर मैं तो ये शब्द कहूंगा, हे शापित मिराज। स्वर्गदूत ने कहा, वहां के हर एक निवासी शापित हो, क्योंकि वे प्रभु की मद के लिए आगे नहीं आए। उस दुष्ट ताकतवर का सामना करने के लिए जो प्रभु का विरोध है। स्वयं संतुष्ट रहने वाला वर्ग। मेरे समक्ष एक ऐसा वर्ग भी प्रस्तुत हुआ जो सजग व सचेत है, जिनमें उदारता की भावना, समर्पण, भलाई करने से प्रेम है, किंतु फिर भी वे कोई काम नहीं करते। उन्हें आत्मसंतुष्टि महसूस होती है, और वे केवल ये सोचते रहते कि काश उन्हें अवसर मिलता तो ये करते, या फिर परिस्थितियां हमारे पक्ष में होती तो हम क्या ही बड़े बड़े और अच्छे काम कर लेते। ऐसे लोग केवल अवसरों की बातें करते हुए प्रतीक्षा करते रह जाते हैं। वे उन गरीब नासमझ लोगों को घृणा से देखते और जरूरतमंदों की ओर देखते ही नहीं।
वे सिर्फ अपने लिए ही जीते हैं, दूसरों की भलाई के लिए बुलाए जाने पर आगे नहीं आते। अपनी योग्यता का इस्तेमाल, स्वयं के लिए जीवन में मिली सुविधाओं का उपयोग व लाभ
केवल उन्हीं के लिए हो, उसमें जंग लगने के लिए नहीं, ना ही गलत उपयोग के लिए, और ना ही उस टैलेंट को जमीन में गाड़ने के लिए दिया गया है। उसका तो इस्तेमाल दूसरों के लिए होना चाहिए। जो लोग इस प्रकार स्वार्थी, कंजूस और बुरी विचारधारा वाले हैं, उन्हें अपने इस निम्न स्तर के काम करने के लिए प्रभु को लेखा देना होना, उस टैलेंट को जिसको उन्होंने व्यर्थ गवा दिया। ज्यादा जिम्मेदार लोग, जो उदार मन रखते और स्वाभाविक रूप से ही आध्यात्मिक कार्यों को करने के लिए शीघ्रता करते हैं, यदि कभी इन्हें काम नहीं मिलता और जिस अवसर की खोज में रहते हैं, यदि वह नहीं मिलता, तब भी उन लोगों के ठीक विपरीत सभी परिस्थितियों का सामना करते हुए वे उनसे कहीं ज्यादा सफल सिद्ध होते हैं, जबकि उनके पड़ोसी सब कुछ होने के बाद भी अपनी निम्न स्तर की सोच में ही पड़े रह जाते हैं। ऐसे लोग स्वयं को ही धोखा देते हैं। वे केवल खूबियों का भंडार हैं, जिनको इस्तेमाल किया ही नहीं गया, उनसे केवल वे अपने ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ाते जाते हैं। और यदि वे अपने प्रभु के गुणों का उपयोग न करें तो वे वैसे ही रखे रह जाएं, तो उनकी दशा अपने पड़ोसियों से कम न होगी, जिनसे वे स्वयं इतनी घृणा करते हैं। इनके लिए यह कहा जा सकता है, तुम पिता की इच्छा जानते थे, तब भी उसे पूरा नहीं किया। शैतान की मृत्यु का अंत। परमेश्वर के लोगों को उसकी चेतौनियों और दिए गए चिन्हों पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। प्रभु यीशु के आगमन के चिन्ह बहुत ही सरल हैं, उनमें कोई संदेह नहीं। इस बात को ध्यान में रखते हुए सभी जिन्हें सत्य की जानकारी है, जीवित गवाह होने चाहिए। परमेश्वर प्रचारकों और लोगों दोनों को जाग जाने को कहता है। संपूर्ण स्वर्ग भी एक समय उत्तेजित है, क्योंकि पृथ्वी के अंत होने का समय पूरा होने को है। हम सब अंतिम दिनों में होने वाली घटनाओं से घिर चुके हैं और अधिक कठिन समय आने पर है, फिर भी हम जागृत नहीं हैं। इस प्रकार की अकर्मण्यता और नाकामी प्रभु के समक्ष भयंकर है। ये मृत्यु की मूर्छा, कुछ ना कर पाने की स्थिति केवल शैतान की ओर से है। अविश्वास, जो मृत्यु का करीबी रिश्तेदार है, से हमारे लोग और कलीसियाएं घिर गई हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के दिए वरदान का उपयोग नहीं करते, उन पर सत्य का प्रकाश नहीं पहुंचाते, जो इस बहुमूल्य सत्य से अनजान है। प्रभु ऐसे क्षमा पाए हुए लोगों को बुलाता है, जो प्रभु यीशु की रोशनी पाकर आनंदित हैं और दूसरों को भी प्रभु से मिलाना चाहते हैं, अज्ञानता के अंधकार से निकालकर जीवन की रोशनी देकर बचाना चाहते हैं। परमेश्वर के लोग, जो परमेश्वर का कोई काम नहीं कर रहे, केवल निष्क्रिय बैठे हैं, उन्हें शैतान खोज रहा है और वह किसी तरह उन्हें परमेश्वर की सच्चाई लोगों में फैलाने के काम से रोक रहा है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि वे खुद बचें और न दूसरों को प्रभु यीशु की सच्चाई बताकर उन्हें बचा सकें। वो चाहता है कि वे आखिर में जब तोले जाएं तो कम पाए जाएं और नरक की आग में डाले जाएं। मनुष्य खतरे में है, भीड़ के भीड़ लोग नाश हो रहे हैं, तो कैसे केवल गिने चुने कुछ ही लोग इनकी आत्माओं को बचाने के बोझ से दबे हैं। जगत का भविष्य एक तराजू पर टिका हुआ है, किंतु उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता जिन्हें दुनिया का सबसे अमूल्य सत्य की जानकारी है और वे उस पर विश्वास भी करते हैं। सत्य जो इस मरणहार मानव समाज को बचा सकता है। वास्तव में मसीह जैसे प्रेम की कमी है, जिस प्रेम की खातिर प्रभु ने स्वर्गीय सिंहासन छोड़कर मानव स्वभाव में आ गया, ताकि मानवता मानवता को छू सके और मानवता को स्वर्ग का रास्ता दिखा सके। यही एक मूर्छा, निष्क्रियता है परमेश्वर के लोगों में, जो उन्हें अपना कर्तव्य निभाने की समझ एवं समय की मांग से दूर कर देती है। यहां यह कहना उचित होगा कि निष्क्रिय विश्वास अनेक आत्माओं को बचा नहीं पाया।
शैतान ऐसे अनगिनत, नींद से भरे, आलसी किंतु प्रबुद्ध मसीहियों की एक लंबी सूची अपनी सेना को ताकतवर बनाने के लिए और अपने पक्ष में आत्माएं जीतने के लिए काम मिला रहा है। कई लोग जो ये मानते हैं कि मसीह के लिए कुछ किए बिना वे प्रभु की नजदीकी में बने हैं, वे वास्तव में शैतान को लाभ पहुंचाने के लिए भूमिका तैयार कर रहे हैं। अपने प्रभु के कर्मठ सेवक होने में तो वे असफल रहे, अपना कर्तव्य भी नहीं पूरा किया, समझाइश के शब्द भी नहीं बोले। ऐसे लोगों ने शैतान को अवसर दिया कि मनुष्यों पर वो अपना कब्जा जमा ले जो शायद प्रभु यीशु के खत्ते में लाए जा सकते थे। जब मैं बाइबल वचन अध्ययन करता हूं, मुझे इसराइलियों के लिए जो अंतिम दिनों में रहते हैं चिंता करता हूं। उन्हें व्यभिचार से दूर रहने की सलाह दी गई है, किंतु मुझे डर है क्योंकि वे सब तो नींद में गाफिल हो सांसारिक हो गए हैं, और इनमें से कौन प्रभु का सेवक है और कौन नहीं है इसका पता लगाना कठिन हो गया है। प्रभु से उसके लोग दूर होते जा रहे हैं और संसार से उनकी नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। प्रभु के चुने लोगों को संसार से अलग करने वाला चिन्ह गायब हो गया है। प्राचीन काल के इसराइलियों की तरह आज के प्रभु के लोग भी राष्ट्रों की घृणित वस्तुओं का पीछा करने लगे हैं। आध्यात्मिक नजरिए की कमी। केवल कुछ कलीसियाओं में ही नहीं, बल्कि पूरे जगत में प्रभु यीशु के कार्य को परिणाम तक पहुंचाने में नकारात्मकता देखी जा रही है। लोग लापरवाह हो गए हैं। इस लापरवाही के कारण एक ऐसी परिस्थिति उठ खड़ी हुई है जिसने परमेश्वर के सर्वोच्च एवं पवित्र कार्य को ग्रहण लगा दिया है। कलीसिया में कड़वाहट और कटाक्ष करने की आत्मा आ गई है, तथा आध्यात्मिक सोच या विचार विमर्श करने की आत्मा धुंधली पड़ती जा रही है। इन सबके कारण प्रभु यीशु के प्रचार कार्य को बड़ी हानि उठानी पड़ी है। इंसान होने के नाते इस दशा के बारे में सोचकर मैं बहुत दुखी हो जाता हूं। प्रभु ने तब भी हमारे लिए स्वर्ग के द्वार बंद नहीं किए, किंतु हमारा लगातार पाप के गर्त में गिरना परमेश्वर से दूर होने का कारण बना है। गर्व, लालच और संसार से प्रेम ने लोगों के हृदय में घर कर लिया है, और अब उनके मन में स्वर्गीय राज्य से बहिष्कृत किए जाने या सजा पाकर नाश हो जाने का डर भी नहीं है। गंभीर एवं हठपूर्वक किए गए पाप हमारे बीच में आ गए हैं। उसके बावजूद लोगों का सामान्य विचार है कि कलीसिया बढ़ रही है और चारों ओर शांति और आध्यात्मिक संपन्नता है। लोगों ने प्रभु यीशु के पीछे चलना छोड़कर मिस्रियों के समान तेजी से मूर्ति पूजक बनते जा रहे हैं। तब भी थोड़े ही हैं जो चिताए गए और अचंभित हैं और जानते हैं कि उन्हें आध्यात्मिक शक्ति की बहुतायत से जरूरत है। गवाहियों पर अविश्वास और परमेश्वर की आत्मा पर शक करना सभी कलीसियाओं को खमीरा बना रहा है, और शैतान यही तो चाहता है। आत्मिक शक्तिहीनता। ढेर सारी रोशनी का पुंज यहोवा परमेश्वर के लोगों के ऊपर चमकाया गया है, किंतु बहुतों ने इस रोशनी को फैलाने से इनकार किया है, और यही कारण है कि वे आत्मिक रूप से मरते जा रहे, कमजोर पड़ते जा रहे हैं। लोगों के नाश होने का कारण ज्ञान की कमी नहीं है। वे लोग जो मार्ग, सत्य और जीवन जो प्रभु यीशु में मिलता है को नहीं जानते, वे दोषी ठहराए नहीं जाएंगे। वो सत्य जो उनको समझाया गया, वो रोशनी वचन उनकी आत्मा पर चमकाई गई, किंतु उन्होंने उसे नकार दिया, अनदेखा किया, इसके कारण वे नाश किए जाएंगे। वे लोग नाश नहीं होंगे जिन्हें वो रोशनी मिली ही नहीं कि वे उसका इनकार करते। क्या क्या प्रभु के दाख की बारी के लिए किया जा सकता था और क्या किया गया? रोशनी, वचन की रोशनी जो पाप के अंधकार को दूर करने वाली अद्भुत रोशनी प्रभु के लोगों को दी गई। पर जब तक वे ये मान नहीं लेते कि प्रभु ही उन्हें बचा सकता है, तब तक वे बचाए नहीं जा सकेंगे। उन्हें वचन की सच्चाई में जीवन बिताना होगा। वचन का प्रचार प्रसार अंधकार को रोशन करने के लिए करना होगा, तभी उद्धार संभव है। स्वर्गीय आंखों की जरूरत। कलीसिया के लोगों को अपनी आंखों को स्वर्गीय काजल से अभिषिक्त करना होगा, ताकि वे अपने चारों ओर के लोगों की जरूरत को देख सकें और वचन का प्रकाश उन तक पहुंचाने। परमेश्वर लगातार लोगों को बुला रहा है कि वे चौड़े व सकरे मार्गों पर निकल जाएं, गली कूचों सड़कों के किनारे से लोगों को बरबस पकड़ कर ले आएं, कि उसका घर भर जाएं। यहां तक कि हमारे घरों के अंदर ऐसी बहुत सी आत्माएं हैं जिनमें हमने रुचि नहीं दिखाई, कि वे भी सोचने पर मजबूर हो जाएं कि हम भी उनके बचाए जाने में रुचि रखते हैं। ये काम तो हमारे हाथों में हमारे करीब ही है,
जिसे परमेश्वर चाहता है कि पूरी कलीसिया इसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लें। हमें खड़े होकर ये नहीं कहना है कि मेरा पड़ोसी कौन है। हमें याद रखना है कि हर वह व्यक्ति जिसे हमारी मद और सहानुभूति की जरूरत है, वही हमारा पड़ोसी है। हर वह व्यक्ति जो हमारे विरोधी शैतान के द्वारा सताया गया और घायल किया गया है, हमारा पड़ोसी है। हर व्यक्ति जो प्रभु का धन है, हमारा पड़ोसी है। जिन लोगों को प्रभु यीशु ने हमारा पड़ोसी ठहराया था, यहूदियों ने उन विशेष स्तरों को ठुकरा दिया। अब कोई क्षेत्रीय बंधन, बनावटी रुकावटें, जाति, धर्म अथवा वर्ग ऊंचा और नीच बाकी नहीं रहा। धार्मिक जोश और ऊपरी दिखावा ढोंग। शैतान अब अपने वह सारे हथकंडे तथा धोखा देने वाली शक्ति का इस्तेमाल परमेश्वर के लोगों को तीसरे स्वर्गदूत के संदेश की गहराई से दूर करने में लगा रहा है, जिसका पूरे संसार में जोश खरोश में पूरी ताकत से प्रचार करना जरूरी है। जब भी परमेश्वर के अभिषिक्त लोग शैतान के जाल से निकलकर प्रभु के काम को करने के लिए अलग होते हैं, प्रभु की ओर फिरते हैं, तब शैतान भी अपना प्रबल दांव उन पर लगाता है। उन्हें धर्मांधता में और केवल दिखावे के काम की ओर फेर देता है, जिससे लोग उसी के कब्जे में रहें, उसी की उपज के भाग हों। अभी वह समय है कि हमें बिना विलंब किए चौकस रहना है। चौकस रहो। शैतान की हर एक उस चाल से जो वह हम पर चलना चाहता है, उसकी हर जाल को नाकाम करो जो वह हमारे लिए बुनता है। हमारे कलीसियाओं में नैतिकता की बातें करने वाले बड़े बड़े लोग हैं, और ऐसे दिखावटी काम करने वाले भी अनेक लोग मिल जाएंगे जो जगत की ज्योति बनने या कहलाने के योग्य नहीं। स्वार्थपूर्ण संकीर्णता। प्रभु के लोगों में अब न तो अधिक धार्मिकता बची है और न ही विश्वास। इसका मुख्य कारण जो मुझे दिखाया गया है, ये है कि वे अब अपने स्वार्थीपन के कारण अपने तक ही सीमित हो गए हैं। यहां तुम्हारे मेल मिलाप की अधिकाई तो है ही नहीं जो प्रभु आपसे अपेक्षा करता है। ये बहुत बार की गई प्रार्थना भी नहीं, किंतु सही कार्य है, सही कार्य जो सही समय पर किया जाए। लालच। अभी भी बहुत से लोग जीवन में बदलाव लाना नहीं चाहते। वे प्रभु की राह पर चलने से इनकार करते हैं, और जब परमेश्वर का काम आगे बढ़ाने के लिए स्वेच्छा से कार्य करने वालों को बुलाया जाता है, तो कुछ लोग अपनी सांसारिक धरोहर को छोड़ना नहीं चाहते, स्वार्थी हो जाते हैं। ऐसे लालची परमेश्वर के विश्वासी लोगों की भीड़ से अलग हो गए हैं। 20 में से एक भी तैयार नहीं। ये एक गंभीर कथन है जो मैं कलीसिया के लिए कहता हूं कि वे 20 लोग जिनके नाम कलीसिया की नामांकन पुस्तक में लिखे हुए हैं, उनमें से एक भी इस दुनिया के इतिहास के खत्म होने के पूर्व दिए गए काम को करने के लिए तैयार नहीं है। और ऐसे ही लोग परमेश्वर से रहित होंगे और उस उद्धार की आशा जो केवल प्रभु यीशु में है, उससे भी दूर होकर पापियों के साथ गिने जाएंगे। उनके सारे काम दिखावे के हैं, संसार के लिए हैं, जबकि उन्हें लगता है कि वे प्रभु की सेवा में लगे हैं। वे तो परमेश्वर से ज्यादा मनुष्यों की सेवा में अधिक दिलचस्पी दिखाते हैं। ऐसे आधा आधा बांटकर किया गया काम लगातार यह दर्शाता है कि वे प्रभु का इनकार करते हैं, न कि उसके प्रति समर्पित हैं। ऐसे बहुत से लोगों को कलीसिया में लाया गया है जिन्होंने आत्मिक रूप से समर्पण नहीं किया है, न ही वे पवित्र हुए हैं। उनका अपना आत्मिक प्रभाव अभी भी अनैतिकता, भ्रष्टाचार, सांसारिक भावनाओं से ओतप्रोत। उनके हृदय, उनके उद्देश्य, उनके दिन प्रतिदिन के कार्यकलाप सभी सांसारिक बुराइयों से भरे हुए हैं, फिर भी अपने आप को प्रभु का सेवक होने का दावा करते हैं, पापियों का जीवन जीते मसीही होने का दावा करते हैं। यदि वे सच्चे मसीही हैं तो प्रभु यीशु का अंगीकार करेंगे और उस पाप भरे जीवन को छोड़कर निकल आएंगे, किसी अपवित्र वस्तु को छुएंगे नहीं और उनसे दूर रहेंगे। मैंने अपनी कलम नीचे रख दी और अपनी आंखें ऊपर उठाकर प्रार्थना करने लगी कि हे पिता, इन सूखी हड्डियों में जान फूंक दे कि ये जीवित हो जाएं। ये पाप में गिर गए थे, इन्हें बचा लें। अंत करीब है। समय चुपचाप हमसे चुराया जा रहा है और हम इससे बेखबर हैं। बिना आवाज किए, बिना बताए, जैसे एक शातिर चोर रात के समय अपने काम को अंजाम देता है,
जब सभी नींद की गफलत में होते हैं, जब उन्हें आभास भी नहीं होता और चोर चुपचाप चोरी करके चला जाता है। सोने वाले इस बात से अनजान बिना तैयारी के सोए रहते हैं। हे पिता, ऐसे लोगों के हृदय पवित्र आत्मा से कायल कर दे, जो बड़े आराम का जीवन जी रहे हैं, ताकि वे अन्य लोगों की तरह सोते ही न रह जाएं, किंतु चौकस रहें, जागते रहें। पूर्ण जागरण एवं सुधार आवश्यक। मसीहियों को तैयार होना चाहिए उस अद्भुत व अचानक आने वाले दिन के लिए, जिससे संसार के लोग अनजान हैं। मसीहियों को यह तैयारी परमेश्वर के वचन के गहरे अध्ययन तथा उसके एक एक नियम व विधियों को अपने जीवन में पालन करने के द्वारा संभव है। परमेश्वर हर एक को पूर्ण जागरण करने और अपने चाल चलन में सुधार लाने के लिए बुलाता है। हमारी सबसे अधिक आवश्यक जरूरतों में हरेक के लिए सच्ची धार्मिकता का पूर्ण जागरण कर धार्मिकता के प्रति जागरूक होना, सजग होना है। इस प्रकार की धार्मिकता की खोज ही हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए। समय आ गया है कि पूर्ण रूप से बदलाव लाया जाए। जब लोगों के जीवन में बदलाव आएगा, तब हर एक विश्वासी में प्रार्थना का आत्मा कार्य करेगा और कलीसिया से कलह और रुकावटें दूर हो जाएंगी। पवित्र आत्मा की अगुवाई में ही जागरूकता और बदलाव लाए जाने चाहिए, क्योंकि कार्य के प्रति जागरूकता और बदलाव दोनों अलग अलग हैं। पूर्ण जागरण आत्मिक जीवन को पूर्ण रूप से नया होने को दर्शाता है। मन व हृदय को तुरंत काम करने के लिए उत्साहित कर ताकत प्रदान करना है। आत्मिक मृत्यु से छूटकर पूर्ण उद्धार पाना है, जबकि जीवन में बदलाव एक प्रकार का पूर्ण गठन है, जिसमें विचारों एवं सिद्धांतों, आदतों और अभ्यासों का मेल होता है। जीवन में बदलाव धार्मिकता का अच्छा परिणाम कभी नहीं ला सकता, जब तक कि उसका संबंध आत्मिक बदलाव से न हो। पूर्ण जागृत और जीवन में परिवर्तन दोनों अपने अपने नियोजित काम करते हैं। प्रचार का काम करने में दोनों को एक होकर मिलकर काम करना अच्छे परिणाम ला सकता है।
क्या वचन हमें शुद्ध और अधिक पवित्र काम करने का आह्वान नहीं करता है? जो हमने अभी तक होते देखे ही नहीं, परमेश्वर उन्हें बुलाता है जो पवित्र आत्मा की पूर्ण अगुवाई में होकर चलने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि पूर्ण रूप से बदलाव केवल पवित्र आत्मा के द्वारा ही संभव है। हमारे इस काम में मुझे कई रुकावटें नजर आती तो हैं, किंतु फिर भी परमेश्वर हमें काम करने के लिए कतार में खड़ा करता है, हमारी अगुवाई करता है। हम उसकी सेना के एक एक सिपाही को अपने स्थान पर दृढ़ता से खड़े होना, पूरी तरह से परमेश्वर के हाथों में अपना सब कुछ समर्पण कर देना, जो कि पिछले कई सालों के दौरान नहीं किया, वो करना है। और मैं तो काफी प्रभावित हुआ हूं रात्रि के उस दृश्य से जो मेरी आंखों के सामने से गुजर गया। वो बड़ा अद्भुत क्षण था, एक बड़े बदलाव का काम जो जगह जगह पर हो रहा है। हमारे कई लोग पंक्ति बांधकर खड़े हो गए हैं कि जैसे ही परमेश्वर उन्हें बुलाए, वे तुरंत काम करने के लिए दौड़ पड़े। द जनरल कॉन्फ्रेंस बुलेटिन, 29 मई 1913, पेज 34। दर्शन में रात्रि के दौरान मैंने एक ऐसा बड़ा बदलाव प्रभु के लोगों के बीच में देखा, जिसमें अनेक लोग परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। बीमार चंगे हो गए, अन्य आश्चर्य कर्म भी देखे गए। हजारों लोग परिवारों से जा जाकर मिल रहे थे और उनके बीच बाइबल का वचन पढ़कर सुना रहे थे। लोगों में हृदय पवित्र आत्मा की शक्ति से बदले गए थे। उदारता से हृदय परिवर्तन की आत्मा को काम करते देखा गया। हर दिशा में लोगों के घरों के द्वार सत्य का प्रचार, सच्चाई का उद्घोषणा करने के लिए खुल गए। ऐसा लगता था कि जगत स्वर्गीय प्रकाश से रोशन हो गया है और प्रभु की अपरंपार आशीष नम्र व सच्चे लोगों को प्राप्त हुई। परमेश्वर के लोगों में मन फिराव की अत्यधिक आवश्यकता है। वर्तमान कलीसिया की स्थिति देखकर ये सवाल उठता है कि क्या कलीसिया द्वारा उस प्रभु येशु को इस तरह पेश किया जाना कितना उचित है, जिसने पूरे जगत के लिए अपनी जान दे दी। जब कलीसिया से आलस्य और उत्साहहीनता पूरी तरह से खत्म हो चुकी होगी, तब प्रभु का आत्मा पूरी शक्ति से काम करना प्रारंभ करेगा, स्वर्गीय सामर्थ काम करेगी। तब कलीसिया स्वयं स्वर्गीय सेना के काम को देखने पाएगी। सच्चाई की रोशनी पूरी तरह से दिखाई देगी। एक शक्तिशाली रोशनी की किरण जो प्रेरितों के समय में दिखाई दी थी, और जिसने कई आत्माओं को बुराई से सच्चाई की ओर फेर दिया था। संपूर्ण जगत एक बार फिर से परमेश्वर की ज्योति से जगमगा उठेगा। काम में देरी खतरनाक साबित होगी। मुझे दिखाया गया कि परमेश्वर के लोग बहुत बड़े परिवर्तन के होने की बाट जोह रहे हैं। कोई ऐसी शक्ति जो उन पर हावी हो जाए, किंतु वे निराश होंगे क्योंकि वे गलत सोच रहे हैं। उनके बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, उन्हें काम करना होगा। उन लोगों को स्वयं काम करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी होगी। उन्हें परमेश्वर से गिड़गिड़ाकर सच्चे ज्ञान के लिए प्रार्थना करनी होगी। ये सभी दृश्य हम लोगों को जागृत करने और प्रभु का काम करने के लिए उत्साहित करते हैं कि ये सच्चाई हर एक हृदय, हर एक कान तक पहुंचाई जाए जो वचन के सुनने व हृदय से मानने वाले हों। पृथ्वी पर की फसल पकने पर है। दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो वर्तमान अवसरों का बुद्धिमानी पूर्वक लाभ न उठाकर बेकार खाली बैठे हैं। उस विशेष आत्मिक वर्षा के लिए जो सब कुछ नया कर देगी, जिसके द्वारा वे दूसरों को अंधकार से निकालकर सच्चाई की रोशनी दिखा सकेंगे। वे वर्तमान अवसरों एवं कर्तव्यों को न करते हुए अपनी मशालों को बुझने दे रहे हैं। वे बैठे बैठे उस समय का इंतजार कर रहे हैं कि उनके बिना काम किए वे उन आशीषों के हकदार होंगे जिससे वे बदल जाएंगे और प्रभु की सेवा के योग्य ठहराए जाएंगे। निर्माता नहीं किंतु उपभोक्ता।
स्वर्गीय बादशाहत के लिए प्रभु यीशु के प्रबुद्ध चेलों की परीक्षा की घड़ी है। उनका ठंडा पड़ा हुआ जोश और प्रयासों की कमी जो प्रचार कार्य में देखी गई है, उन्हें वफादार साबित नहीं कर रही। यदि जो कुछ वे करते वे सब अच्छा होता तो उनके प्रयास विफल नहीं होते। यदि उनके हृदय और मन पूर्ण रूप से इस काम में लगे होते तो वे बहुत कुछ अच्छे परिणाम पाते। वे स्वयं जानते हैं, संसार भी जानता है कि काफी हद तक उनका स्वयं से इंकार और क्रूस उठाकर चलना कमजोर पड़ गया है, उसका स्तर गिर गया है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखे गए हैं, जो बनाने वाले नहीं किंतु उपयोग करने वाले उपभोक्ता हैं। कई लोग जो प्रभु यीशु के कहलाते तो हैं किंतु उसकी महिमा को धूमिल करते, उसकी सुंदरता की बखान नहीं करते, उसको वे महिमा व सम्मान नहीं देते जो देना चाहिए। कलीसिया के रिकॉर्ड में कई ऐसे मसीहियों के नाम दर्ज हैं जो प्रभु के नियम के पालन करने वाले नहीं हैं। वे उसकी चेतौनियों पर ध्यान नहीं देते, ना ही उसका बताया हुआ काम ही करते हैं। वो तो केवल शैतान के हाथों में हैं। वे कोई भी भलाई का काम नहीं करते, अतः वे कई तरह से कलीसिया के लिए हानिकारक हैं, क्योंकि ऐसों का जीवन अन्य लोगों के लिए जीवन की सुगंध नहीं किंतु मृतकों के लिए मृत्यु की गंध है। आज्ञा पालन, पाप से छुटकारा। जो लोग अपने आप को परमेश्वर की व्यवस्था के जानकार कहते हैं, उन लोगों के बीच में एक खतरा मंडरा रहा होता है। वे अपने आप में निश्चित होते हैं, ये मानकर अपने आप को सांत्वना देते हैं कि परमेश्वर की आज्ञाओं व नियमों की केवल जानकारी होना उन्हें परमेश्वर के न्याय सिंहासन के समक्ष बचाने में मदद करेगा। वे पाप व बुराई से दूर रहने से इनकार करते और प्रभु के सेवकों पर आरोप लगाते हैं। उन्हें सिखाते हैं कि वे बुराई को अपने से दूर रखने में कोई कसर नहीं छोड़ते। प्रभु जो पाप से घृणा करता है, उन लोगों को जो प्रभु की आज्ञा मानने के लिए संसार की सारी बुराइयों से दूर रहते हैं, बुलाता है। परमेश्वर के वचन का इनकार, पाप से क्षमा न पाना, दोनों ही परमेश्वर के लोगों के लिए गंभीर समस्या बन सकते हैं, जैसे प्राचीन इसराइलियों के लिए बना था। आखिरकार एक परमेश्वर के न्याय की समय सीमा भी पूरी होने को है। अब वह और ज्यादा देरी नहीं करेगा लोगों का न्याय करने के लिए। बुराई व पाप में मरे हुए। हमारी कलीसिया के अधिकतर लोग पाप और बुराई में इतने गिर गए हैं कि मृतक समान हो गए हैं। वे द्वार की सांकलों की तरह इधर उधर आते जाते रहते हैं। कई वर्षों से उन्होंने बड़ी तन्मयता व ध्यान से पवित्र एवं आत्मा को जागृत करने वाली सच्चाई को सुना, किंतु इस सच्चाई पर चले नहीं। इसीलिए वे कम से कमतर होते चले गए सत्य वचन की कीमत को समझने व पालन करने में। जब लोग उस काम को करने की ठान लेते हैं, तब परमेश्वर की सामर्थ का इनकार कर देते हैं। यदि वे ऐसा लगातार करते रहेंगे तो परमेश्वर भी उन्हें त्याग देगा।
वे स्वयं को परमेश्वर के परिवार के सदस्य होने के लिए अयोग्य सिद्ध कर रहे हैं। मानव नीति शास्त्री। कई लोग जो मसीही कहलाते हैं, अधिकतर अपने आप को नैतिक ज्ञान के शास्त्री मानते हैं। वे उस इकलौते इनाम का इनकार करते हैं जो उन्हें मसीह के नाम को महिमा देने के योग्य बनाता है, जो पूरे जगत में फैलाया जाता है। उनको पवित्र आत्मा के द्वारा किया गया काम अजीब लगता है। वे वचन के अनुसार चलने वाले नहीं हैं। आकाशीय शक्तियां, जो प्रभु के दास और जो संसार के सरदार के दास हैं, इनमें अंतर करने में कठिनाई का सामना करते हैं। मसीह के कट्टर शिष्य भी अब अपनी अलग पहचान लिए हुए नहीं पाए जाते। दोनों के बीच का अंतर नहीं के बराबर है। लोग संसार के लोगों के समान हो गए हैं। उनका व्यवहार, उनकी रीति रिवाज, उनका स्वार्थीपन, सब कुछ उनमें दिखाई देता है। सारी कलीसिया संसार के अन्य लोगों की तरह अनाज्ञाकारी हो गए हैं, जबकि होना तो ये चाहिए कि संसार को मसीह के करीब आना और आज्ञाओं को मानना चाहिए। ये प्रक्रिया दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। गुनाहों के दागों से पूर्ण रिकॉर्ड। कई लोग परमेश्वर के लोग होने का ढोंग करते हैं। उनके नाम चाहे कलीसिया के रिकॉर्ड में लिखे हुए हैं, किंतु स्वर्ग में उनका दोषपूर्ण रिकॉर्ड है। लेखाकार। स्वर्गदूत ने बड़ी ईमानदारी से सबका लेखा लिखा है। हर एक स्वार्थपूर्ण कार्य, हर एक गलत शब्द, पूरा ना किया गया कर्तव्य, हर एक छिपा हुआ पाप, हर एक चतुराई से भरी चाल आदि सभी काम बखूबी लेखाकार स्वर्गदूत के द्वारा स्वर्ग की पुस्तक में लिखे जा रहे हैं। काम का बोझ उठाने वाले श्रमित हो गए हैं, क्योंकि कुछ लोग काम का बोझ उठाने के लिए तैयार ही नहीं हैं, जबकि वे उसे हल्का कर सकते थे। अतः जो प्रभु के काम को ईमानदारी से करने में लगे हैं, उन पर ये बोझ बढ़ता जा रहा है। उन्हें लगता है कि बहुत काम है करने के लिए, इसलिए वो अपने को और बोझिल कर लेते हैं, इसीलिए थक कर चूर हो रहे हैं। अपने विश्वासी होने का बुद्धिमत्तापूर्ण कारण देने में असमर्थ। बहुत से लोग जो स्वयं को परमेश्वर के सच्चे भक्त कहते हैं और इन अंत के दिनों में सच्चाई में विश्वास करने वाले कहते हैं, वे ही आखिर में स्वर्ग के योग्य नहीं ठहराए जाएंगे। उन्होंने अधिक महत्व की बातों का ध्यान ही नहीं दिया। उनका बदलाव ऊपरी दिखावा है, दष्ट गहरा और पूर्ण रूप से नहीं है। इन्हें ये नहीं पता कि ये सच्चाई में विश्वास क्यों करते हैं। शायद इसलिए क्योंकि दूसरे लोग परमेश्वर पर विश्वास करते और ये भी मान लेते हैं कि यही सत्य है। उनके विश्वास करने का कोई ठोस व सही कारण ये नहीं दे सकते। दूसरे लोग इनको या इनके विश्वास को देखकर प्रभावित नहीं होते, ना ही इनका कोई अनुभव प्रभावकारी होता, और ना ही इनके पास सत्य का वो ज्ञान है कि वे उसे कर्तव्य समझकर प्राप्त कर सकें। सामर्थ और दष्टता सच्चे हृदय, सरल हृदय वाले लोगों में हैं, जो वाकई में वचन को समझते और उस पर चलते हैं। भविष्यवक्ता होने का ढोंग। इस जगत के कुछ लोग परमेश्वर के विश्वास में और पवित्र आशा में सभी भविष्यवाणियों के पूरी होने का संदेश लोगों को सुना रहे हैं, अपनी आत्माओं का शुद्धिकरण आज्ञाओं का पालन करने के द्वारा कर रहे हैं, ताकि प्रभु यीशु के आगमन पर वे विवाह के वस्त्र के बिना न पाए जाएं। एक प्रभावशाली स्वप्न जो विचलित कर देगा। 29 सितंबर 1886 मुझे एक स्वप्न दिखाया गया। मैं एक बड़े समूह के साथ जा रही थी, जो बेर, एक प्रकार का फल, की तलाश में घूम रहे थे। उस समूह में अनेक जवान पुरुष व स्त्रियां थीं, जो फल बटोरने में मद करते थे। शायद हम किसी शहर में थे, क्योंकि वहां छोटा स्वा वाली मैदान था, किंतु शहर के चारों ओर खुले मैदान, सुंदर बाग और बुआई के लिए बगीचे तैयार किए गए थे। एक बड़ी गाड़ी जरूरत के सामान से लदी हुई हमारे आगे चल रही थी। अचानक गाड़ी रुक गई और कोई ऊंची, कोई नीची झाड़ियां थीं, जिनमें बड़े सुंदर जंगली बेर लगे हुए थे। झुंड के लोग काफी दूर थे ये सब देखने के लिए। मैं आसपास पड़े बेर इकट्ठे करने लगी। मैं बड़ी सावधानी से पके हुए बेर ही बटोर रही थी, कच्चे व हरे बेर नहीं, क्योंकि वे सब एक से दिखते थे, किंतु मैंने उस गुच्छे से पके हुए फल ही बटोरे। उनमें से कुछ बड़े और अच्छे बेर जमीन पर गिर गए, जिन्हें कीड़े व इल्ली जल्दी ही आधा चट कर गए। ओह, मैंने सोचा काश कि इस खेत में पहले ही कोई आ गया होता जो इन पके हुए कीमती बेरों को बचा सकता था, किंतु अब तो देर हो चुकी है। तब भी मैंने बड़ी सावधानी से इन बेरों को उठाया और देखा कि क्या अभी भी इनमें कुछ बाकी है। यदि ये बेर पूरी तरह से खराब भी हो गए थे, मैंने उन्हें उठाया अपने भाइयों को बताने के लिए कि उन्हें यहां अच्छे फल मिल सकते थे यदि वे यहां पर पहले आए होते। तभी समूह के दो तीन लोग वहां टहलते हुए आ गए, जहां मैं भी। वे लोग आपस में बातचीत करने में मशगूल थे। तभी मुझे देखकर कहने लगे, हमने सब जगह ढूंढा पर हमें कोई फल नहीं मिला। मेरे पास इतने फल देखकर वे अचंभित हो गए। मैंने उनसे कहा, यहां झाड़ियों में तुम्हें और फल मिलेंगे, यहां ढूंढो। वे ढूंढने लगे किंतु फिर रुक गए, ये कहते हुए कि यह सही नहीं, क्योंकि इस जगह को तुमने पाया है और यहां के फल भी तुम्हारे हैं। किंतु मैंने उन्हें जवाब दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां मिले वहां से बटोरो। ये परमेश्वर का खेत है, ये बेर भी तुम्हारे हैं, ये तुम्हारे लिए अवसर है कि तुम इन्हें बटोरो।
जल्दी ही मैंने अपने आप को अकेला पाया। दूर से लोगों के हंसने और बातें करने का स्वर सुनाई आ रहा था। वे गाड़ी के पास चले गए थे। मैंने उन्हें पुकारा, तुम क्या कर रहे हो? उन्होंने जवाब दिया, हमें तो कोई बेरीज मिले नहीं, हम तो वैसे ही थक गए और फिर हमें भूख भी लगी है। हमने सोचा कि हम गाड़ी पर जाकर दोपहर का खाना खाएंगे, थोड़ी देर आराम करके फिर ढूंढने निकल जाएंगे। लेकिन मैंने कहा, तुम अभी तक कुछ नहीं लाए और सारी खाद्य सामग्री खाने जा रहे हो हमें कुछ दिए बिना। मैं तो अभी कुछ खा नहीं सकती क्योंकि अभी ढेर सारे फल बटोरना बाकी है। तुम्हें वे नहीं मिले क्योंकि तुमने उन्हें झाड़ियों में ढूंढा ही नहीं। वे कोई झाड़ियों के ऊपर लगे हुए नहीं मिल जाते, उन्हें ढूंढना पड़ता है। ये सच है कि तुम हार भर भर कर नहीं बटोर सकते, किंतु कच्चे न हरे बेरी के बीच में ध्यानपूर्वक ढूंढने पर तुम्हें जरूर अच्छे व काम के बेर मिल जाएंगे। मेरा छोटा सा बर्तन जल्दी ही फलों से भर गया और मैं उन्हें लेकर गाड़ी की ओर गई। मैंने कहा, ये सबसे बढ़िया फल हैं जो मैंने बटोरे हैं। मैंने इन्हें पास से ही बटोरा, जबकि तुम दूर दूर तक गए और फल पाने में सफल नहीं हुए। वे सभी मेरे फलों को देखने आए और कहने लगे, ये ऊंची झाड़ियों के फल हैं, ठोस एवं अच्छे। हम नहीं सोचते कि हम इन ऊंची झाड़ियों में कुछ पा सकते थे, इसलिए हमने नीची झाड़ियों में फल ढूंढे और केवल कुछ फल ही पाए। तब मैंने कहा, क्या तो इन फलों की देखभाल करोगे और मेरे साथ उन ऊंची झाड़ियों में फलों को ढूंढने चलोगे? लेकिन उन्होंने कोई ऐसी तैयारी नहीं की कि वे फलों की देखभाल करते। वहां बहुत से खाली बर्तन और थैले थे जिन्हें फलों से भरना था, किंतु उन्हें तो केवल खाने पीने की चिंता थी। मैं उनका इंतजार करते हुए थक गई और पूछा, क्या तुम फल बटोरने नहीं आए हो? फिर उनकी देखरेख करने को तैयार क्यों नहीं हो? एक ने जवाब दिया, सिस्टर व्हाइट, हमने वास्तव में इन बहुत से घरों में कोई फल पाने की उम्मीद ही नहीं की थी, जहां हमें बहुत चलना पड़ता। परंतु जैसा कि तुम फलों को बटोरने में इतनी दिलचस्पी दिखा रही थी, हमने तुम्हारे साथ आने का निश्चय किया। हमने सोचा था हम अपने लिए पर्याप्त खाना लाए हैं, हम यहां मनोरंजन करेंगे यदि हम फल इकट्ठा नहीं करते हैं। मैंने उत्तर दिया, मैं इस प्रकार का काम करना नहीं जानती, मैं फिर से उन झाड़ियों में जाऊंगी। दिन काफी बीत चुका है, जल्दी ही रात हो जाएगी और तब हम फल नहीं बटोर पाएंगे। उनमें से कुछ तो मेरे साथ आए और दूसरे खाने की गाड़ी के पास ही रह गए। एक और जगह एक छोटा समूह इकट्ठा था और आपस में बातचीत करने में लगा था। वे किसी रोचक विषय पर बातचीत कर रहे थे। मैं उनके नजदीक गई और देखा कि एक स्त्री जो छोटे बच्चे को गोद में लिए थी उनके आकर्षण का कारण थी। मैंने उनसे कहा, तुम्हारे पास केवल थोड़ा ही समय बाकी है, अभी समय है, जितना चाहो काम कर लो। एक नवयुवक और नवयुवती खाने वाली गाड़ी की ओर दौड़ रहे थे। काफी लोग उन्हीं को देखने में लग गए। वे दोनों गाड़ी तक पहुंचकर थक गए और थक कर बैठ गए। काफी लोगों ने भी घास पर बैठकर आराम किया।
इस प्रकार दिन तो बीत गया और काम तो बहुत कम हुआ था,
आखिर मैंने कहा, आप इसे एक असफल अभियान कर सकते हैं, क्योंकि यदि इस प्रकार आप काम करते हैं तो कोई शक नहीं कि तुम्हें असफलता ही मिलेगी। आपकी सफलता या असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप काम को किस प्रकार हाथों में लेकर करना चाहते हो। यहां बेर फल हैं, मुझे मिले भी हैं, लेकिन तुम में से कुछ नीची झाड़ियों में उन्हें व्यर्थ ढूंढ रहे हो। दूसरों को कुछ फल मिले भी हैं, किंतु वे बड़ी बड़ी ऊंची झाड़ियां उन्होंने देखी ही नहीं, क्योंकि उन्हें आशा ही नहीं थी कि उन्हें वह कुछ मिलेगा। तुम देखो, जो फल मुझे उन झाड़ियों में मिले वे पके हुए और बड़े भी हैं। अभी कुछ ही समय में दूसरे बेर भी पक जाएंगे और हम फिर से वहां जाएंगे। इस तरह मुझे सिखाया गया है। फलों को बटोरना। यदि तुमने गाड़ी के आसपास फल ढूंढे होते तो जैसे मुझे फल मिले तुम्हें भी मिलते। जो पाठ तुम्हें आज सिखाया गया वे उन लोगों के लिए हैं जो फल बटोरने का काम सीखना चाहते हैं। इसी प्रकार उन्हें भी करना है। परमेश्वर ने इन फलों से भरी झाड़ियों को इसीलिए इस घनी आबादी वाले स्थान में रखा है कि तुम फलों को बटोर सको। किंतु तुम में से कितने तो खाने पीने और मनोरंजन करने में लगे रहते हो। तुम में से कोई भी नहीं इस निश्चय के साथ यहां आया कि यहां से फल बटोर सके। अब से तुम इस काम को पूर्ण ईमानदारी, जोश और एक अलग नजरिए को ध्यान में रखकर करना, वरना तुम्हारा परिश्रम कभी सफल नहीं होगा। सही तरीके से काम करके तुम अन्य नौजवानों को यह सिखा सकते हो कि खाना पीना और मनोरंजन ही ज्यादा महत्व के काम नहीं है। जब प्रभु का काम करना हो तो पूरा ध्यान उसी काम पर होना चाहिए। खाना पीने के सामान ढोने वाली गाड़ी को नीचे लाना काफी कठिन था, फिर भी तुम्हें खाने की ज्यादा चिंता थी, अपने परिश्रम से बटोरे हुए फलों की नहीं। तुम्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पहले अपने आसपास के फल बटोरें, तब आगे बढ़ते हुए फलों की खोज करते जाएं। फिर वापस लौटते समय भी आसपास से बटोरें और तभी तुम्हें सफलता मिलेगी। एक परीक्षा / न्याय जिसका होना निश्चित। अंतिम पवित्र कार्य को करने कुछ महान लोग नियुक्त किए जाएंगे। वे पूरी तरह से परिपूर्ण, परमेश्वर से मुक्त, जिन्हें परमेश्वर काम में नहीं ला सकता। प्रभु के पास विश्वास योग्य सेवक हैं, जिनका खुलासा उनके जांच पड़ताल के बाद होगा कि वे कितने विश्वासी हैं। अभी भी परमेश्वर की नजरों में कीमती लोग हैं, जिन्होंने बाल देवता को दंडवत नहीं किया। उनके पास तो वो अद्भुत ज्योति भी नहीं है जो तुमको लगातार रोशन कर रही है। किंतु हो सकता है कि ऐसे जीवन ऊपरी तौर से बेतुके हों, किंतु आंतरिक रूप से एक चमकदार चरित्र लिए हुए और प्रभु यीशु का उदार मन को दर्शाने वाले हों। दिन के समय हम आकाश की ओर देखने पर हमें तारे नजर नहीं आते, वे वहां हैं आकाश में स्थिर, किंतु दिखाई नहीं देते। रात के समय ही वे हमारी आंखों के सामने दृष्टिगोचर होते हैं। वह समय ज्यादा दूर नहीं जब हर एक आत्मा परखी जाएगी। कलीसिया से शुद्ध सोना और खार को अलग किया जाएगा। सच्ची धार्मिकता साफ साफ दिखाई देने लगेगी। कई ऐसे तारे जिनकी चमक हमें चौंका देती थी, वे कहीं अंधेरे में चले जाएंगे। खाली बादलों का सा भूसा हवा से उड़ा दिया जाएगा, यहां तक कि उन गेहूं के खत्ते से जो आटा सा भरा पड़ा था। वे सभी जो अपने आप को परमेश्वर के भवन के पात्र समझते किंतु प्रभु यीशु की धार्मिकता से ढाके नहीं गए, वे अपनी ही नग्नता की लज्जा से लज्जित दिखाई देंगे।